समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स, खेल के मैदान की गतिविधियों की भी देंगे जानकारी और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। कार्यक्रम में के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय।
हेलो विशाल, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय and with me of course is my co-host Vishal. Well listeners, he is known for his grounded approach, physical prowess and bringing a modern intensity to the character of Superman in the film Man of Steel, the 2018 movie. Yes, we are talking about Henry Cavill, who played Superman in the DC Extended Universe. Today we celebrate his birthday. We will talk about him in some detail later in our program. But first we start with the news headlines first.
जी अभिषेक, मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजराह हमले की कड़ी निंदा की है। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान।
यूएस एंड ईरान लॉन्च फ्रेश अटैक्स इन गल्फ एज टू साइड्स रेसल कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान।
पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिगिन फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन तमिलनाडु एंड केरलम आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ असेंबली पोल्स रिजल्ट्स।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट दिल्ली कैपिटल्स टू टेक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स इन दिल्ली दिस इवनिंग। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about World Hand Hygiene Day. Yes, today marks an important global observance, World Hand Hygiene Day 2026.
जी, और इस साल की थीम है Action Saves Lives, हाथों की सफाई जैसा एक छोटा काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है और लोगों की जान बचा सकता है।
Absolutely, and this campaign led by the World Health Organization highlights how proper hand hygiene helps prevent infections, especially in healthcare settings.
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हाथों की स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम को लोगों के ध्यान के केंद्र में रखने तथा सुधार के समर्थन में संस्थानों और समुदायों को एकजुट करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 2009 में शुरू किया गया था।
एंड इन 2026, एज द कैंपेन मार्क्स 18 ईयर्स, इट्स थीम एक्शन सेव्स लाइव्स गिव्स द ऑब्जर्वेंस रिन्यूड रेलेवेंस। अवेयरनेस अलोन इज नो लॉन्गर इनफ।
स्वच्छ हाथ, सफाई व्यवस्था, साफ सफाई का जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार और संक्रमण रोकने के मजबूत सिस्टम अस्पतालों और स्कूलों से लेकर घरों, काम करने की जगहों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की जगहों और सामुदायिक स्थलों तक हर जगह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने चाहिए।
एंड दैट्स वेयर द मैसेज बिकम्स अर्जेंट। डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स, विजिटर्स, एवरीवन प्लेज अ रोल। क्लीन हैंड्स आर जस्ट अ हैबिट, दे आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जी बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और ये सिर्फ अस्पतालों की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी खाने से पहले, शौचालय के बाद या खांसने छींकने के बाद हाथ धोने से कीटाणुओं को उसी समय खत्म किया जा सकता है।
एंड हियर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू लिसनर्स, डू यू वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स?
जी बिल्कुल, इसमें बहुत कम समय लगता है, उतना ही समय लगता है जितना हमें अपने पसंदीदा गाने का कोरस दो बार गुनगुनाने में लगता है।
नाइस टिप देयर विशाल, एंड डोंट फॉरगेट यूज सोप एंड वाटर व्हेनेवर पॉसिबल, इफ नॉट एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर वर्क्स टू।
यह एक दिलचस्प बात यह भी है कि हाथों की सही सफाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने में भी मदद करती है।
राइट, एंड दैट्स व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू मेडिसिंस। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस इन द फर्स्ट प्लेस मींस फ्यूअर एंटीबायोटिक्स आर नीडेड।
भारत ने ऐसी पहलों के जरिए एक मजबूत नींव रखी है जो साफ सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ती हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने इसे खुले में शौच यानी कि ओपन डिफेकेशन से आगे बढ़ाकर एक व्यापक स्वच्छता एजेंडा की ओर बढ़ाया है, जिसमें कचरा मुक्त शहर, टिकाऊ स्वच्छता, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी शामिल है।
And for citizens, the action agenda begins with simple but consistent practices, washing hands with soap at critical moments, before eating, after using the toilet, after coughing or sneezing, after handling waste and before caring for the sick remains one of the most effective everyday habits. Food hygiene, safe drinking water, clean household surfaces, responsible waste disposal and menstrual hygiene must also be understood as part of the same wellness framework. Hygiene is not a one-day campaign, it's a daily discipline.
अभिषेक, बहुत पते की बात आपने कही कि ये एक डिसिप्लिन, अनुशासन में शामिल होना चाहिए हाथों की सफाई। संस्थानों पर इस मामले में ज्यादा जिम्मेदारी और आ जाती है। स्कूलों को साफ शौचालय, हाथ धोने की सुविधाएं और साफ सफाई की शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अस्पतालों को संक्रमण की रोकथाम को एक ऐसा मानक बनाना चाहिए जिस पर कोई भी समझौता न किया जा सके। कार्यस्थलों को साफ वॉशरूम उपलब्ध कराने चाहिए और सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए। बाजारों में मिलने वाली खाने पीने के सामान तैयार करते समय साफ सफाई के जरूरी मानकों का पालन आवश्यक है। स्थानीय निकायों को सार्वजनिक साफ सफाई पर नागरिकों के भरोसे को बनाए रखना चाहूंगा। बदले में नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन एक जिम्मेदारी की भावना के साथ, और स्वच्छता से जुड़ी कमियों की जानकारी रचनात्मक तरीके से लोगों को दी जानी चाहिए।
सो इन कंक्लूजन, इट कैन बी सेफली सेड दैट क्लीन हैंड्स मे सीम सिंपल, but they remain one of the most powerful shields in healthcare. And as the world marks World Hand Hygiene Day today, the message is clear. Small actions can save countless lives. World Hand Hygiene Day 2026, therefore, arrives with a message that is simple yet urgent. Clean hands save lives, but action saves them consistently.
स्वच्छता को केवल जागरूकता तक सीमित न रखकर इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हम सभी को बनाना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण साफ स्वच्छ हाथों, स्वच्छ परिवेश और साझा जिम्मेदारी से ही होगा।
सो टू रैप अप अ डिस्कशन ऑन द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विशाल, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज अ पावरफुल रिमाइंडर दैट वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्शंस, क्लीनिंग योर हैंड्स, कैन सेव काउंटलेस लाइव्स। And by making hand hygiene a daily habit, citizens play a direct role in preventing the spread of infections and protecting not only themselves, but also their families and communities. Building awareness is a first step, but true impact comes when responsibility follows, when individuals consistently practice proper hand washing and encourage others to do the same. A healthier society begins with small, mindful actions, and clean hands are a vital step towards a safer, stronger world.
और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि आज उनके पास क्या खास रिपोर्ट्स हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले चल रहे हैं हिमालय की वादियों में। अभिषेक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के कृषि विभाग ने इस वर्ष 1,00,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट जी आइए सुनते हैं।
हिमाचल सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में शुरू की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को रासायनिक खाद के बजाय देसी गाय के गोबर, गोमूत्र तथा स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और खेती की लागत को कम करना है। प्रदेश में अब तक 2,22,000 से अधिक किसान व बागवान परिवार प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। ये पद्धति राज्य की 99% पंचायतों तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों पर देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। कृषि व बागवानी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और करीब 94% लोग सीधे तौर पर अपनी आजीविका के लिए कृषि व बागवानी पर निर्भर हैं। ये क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान देता है। राज्य में किसानों को बेहतर व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्का और गेहूं के आटे का विपणन हिम ब्रांड के तहत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
The much-awaited direct regular Vande Bharat train service between Jammu and Kashmir commenced on May 2nd, 2 days after its formal flagging off by the Union Railways Minister Ashwini Vaishnav from Jammu Railway Station. And earlier, Railways Minister Ashwini Vaishnav, Union Minister Dr. Jitendra Singh, Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah flagged off the extended Srinagar-Katra Vande Bharat Express from Jammu Tawi Railway Station on April 30. The train, which earlier ran between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra, is now operating up to Jammu Tawi. We have more from a correspondent.
The Vande Bharat train service launched on June 6 last year after the inauguration of the Jammu-Srinagar rail line by the Prime Minister Narendra Modi has now been upgraded from 8 to 20 coaches. Earlier, around 500 passengers could travel. Now, nearly 1,400 people can travel between the two capital cities of Jammu and Kashmir, Delhi. The service has been extended from Katra to Jammu to meet rising demand. The first commercial run of the Vande Bharat Express between Jammu and Srinagar on Saturday recorded an encouraging passenger response with around 70% occupancy and widespread satisfaction among travellers. Around 3,925 passengers travelled on the train on its inaugural day, while the number crossed 5,000 on the second day of operations. Train number 26401 carried nearly 940 passengers from Jammu to Srinagar, while another service on the same route transported close to 1,000 passengers. On the return leg, over 1,990 passengers travelled from Srinagar to Jammu, marking a strong turnout on the inaugural day. The passengers are paying ₹730 excluding catering charges for the journey. The service reduced travel time between the two cities as compared to road journeys along the often unpredictable Jammu-Srinagar National Highway. The semi-high-speed train covers the distance between Jammu and Srinagar in about 4 hours and 45 minutes, offering a faster and more convenient alternate to road travel. The rail route is emerging as an affordable and comfortable travel option as airfares between the two cities range from ₹4,000 to ₹6,000. Positive response is being seen as a boost to railway connectivity on Jammu-Srinagar route, with the service offering a cheaper and convenient alternative to air travel. The specially designed all-weather trains are equipped with advanced electronics suited for height, altitude and extreme weather conditions, including temperatures up to minus 10 degrees. The rail link has opened new avenues for transporting goods such as cement, automobiles, food grains, cars and fruits, giving a major boost to trade and business. Passengers, including tourists, need not worry as robust security security measures are in place and the system will be strengthened further. A 1+20 guard system led by an inspector with RPF commandos are ensuring security along the route. Around 3,000 CCTV cameras are monitoring the track and guard rooms established along the route. Besides, drone surveillance and peripheral guarding have been deployed across all the stations. The launch of Vande Bharat Express train will further enhance connectivity between Jammu and Srinagar. The development is also expected to benefit the pilgrims of Shri Amarnath Ji starting on July 3. The rail link will provide major relief in case of highway disruptions. When the Jammu-Srinagar National Highway gets blocked, the tram service will be a great source of help and immense benefit for the commuters, people across the country, as well as Civil Secretariat employees. Part of the Jammu-Srinagar-Baramula rail link, the service is being seen as a major milestone in integrating the Kashmir Valley with the national rail network. This is N. Gulshan Rana for Parikrama from Akashvani Jammu.
गोवा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय के समग्र विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना पर काम करना शुरू किया है. वर्ष 2037 तक के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है जो आने वाले वर्षों में विकास की दिशा तय करेगा. अधिक जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता.
गोवा के जनजाति कल्याण विभाग ने एसटी समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से विजन डॉक्यूमेंट 2037 तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह योजना जनजाति अनुसंधान केंद्र, राज्य के जनजाति कल्याण विभाग और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से तैयार की जा रही है. इस संबंध में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए मडगांव के रविन्द्र भवन में एक बैठक आयोजित की गई. जनजाति कल्याण के लिए 2220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके प्रभावी उपयोग पर विचार विमर्श जारी है. इस डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, खेल, भूमि अधिकार, संस्कृति और साहित्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए 100 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और 15 मई तक प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप देने की संभावना है. सरकार का लक्ष्य अगले 3 महीनों में इस विजन डॉक्यूमेंट को पूरा करना है. इसके अलावा जिन पंचायत क्षेत्रों में जनजाति आबादी 35% से अधिक है वहां जनजाति सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके. परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी.
Farmers in Barak Valley now got a new digital tool to help them grow better crops. We have more from a Silchar correspondent.
Assam University Silchar teacher created a mobile app called Krishi Bikash Barak Valley for the farmers. This new app gives farmers instant expert advice right on their phones. Dr. Shomnath Mukhopadhyay of the Assam University has built the platform with help from the central government. It is easy to use because it can speak to the farmers in their own local languages. The app helps bridge the gap for rural communities by offering tips on specific crops and soil health, live weather updates for the Barak River area and tools to find and fix pest problems quickly. Project leader Dr. Shomnath Mukhopadhyay says the app works great even on cheap phones or with slow internet. Since it can use voice commands, even farmers who struggle with reading can use it easily. Anyone can download the Krishi Bikash app from the Google Play Store. Experts believe this will lead to better harvests and higher profits for farmers across the region. Shashwati Bhattacharji, Akashvani Silchar.
बात खेलों की दुनिया की. आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे. प्रतियोगिता में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया था और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया. 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने जरूरी जीत के लिए जो लक्ष्य था वो 18 ओवर और 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया और उसके अभी केवल 4 विकेट ही खोए गए थे.
Yes, and in some business news, benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The Sensex dropped 252 points to close at 77,018, while the Nifty dipped 87 points to settle at 24,033. And for more updates about market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
और आइए अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन.
आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था.
जा तू वद सानू प्यारी साड़ी धरती मां खूने जिगर तू लिख चले मिट्टी ते ना।
जैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजा मंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई।
सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर जैल कर लिया था।
४७ में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने।
1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे।
हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं।
25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी जैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।
हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे।
नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं।
हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे।
इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था।
5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं।
हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया।
रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में काला पानी की कठोर सजा सुनाई गई।
5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई।
और आज ही जयंती है बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी प्रीतिलता वादेदार की। एक प्रतिभावान छात्रा थीं। प्रीतिलता वादेदार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की थी। चटगांव शस्त्रागार कांड की घटना से प्रभावित होकर इन्होंने क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के दल की सदस्यता ले ली थी। 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता वादेदार ने ही सूर्य सेन के साथ मिलकर यूरोपीय क्लब पर हमला किया था।
Yes, and Adele was born on this day in 1988. She is an English singer, songwriter and actress. Regarded as a British cultural icon, she is known for her mezzo-soprano vocals and sentimental songwriting. Her accolades include 16 Grammy Awards, 12 Brit Awards, an Academy Award, a Primetime Emmy Award and a Golden Globe Award. In 2012, Adele released Skyfall, a soundtrack single for the James Bond film Skyfall, which won her the Academy Award for Best Original Song. Let's listen to it.
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have bad times and you have time doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand.
और आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार नौशाद अली की। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या से कहीं आगे होती है। और ये नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल गढ़ी, शारदा, आन, संजोग जैसी फिल्मों उन्होंने दी और इनका जो संगीत दिया वो हिट भी हुआ और कालजयी भी बना। और इन्हीं की एक फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था दर्द, और उसी का ये सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
Yes, and is particularly known for popularizing the use of classical music in his films. And his first film as an independent music director was Prem Nagar in 1940. His first musically successful film was Ratan in 1944, followed by 35 Silver Jubilee hits, 12 Golden Jubilee and 3 Diamond Jubilee mega successes. Naushad was conferred the Dada Saab Phalke Award and the Padma Bhushan in 1981 and 1992 respectively for his contribution to the Hindi film industry. Yes, and Henry Cavill was born on this day in 1983. He is a British actor. He gained wide recognition for portraying Superman in the DC Extended Universe, beginning with the film Man of Steel 2013 and reprising the role in Batman vs. Superman Dawn of Justice and Justice League, in addition to a cameo appearance in Black Adam and The Flash. Let's listen in to a dialogue from the movie Man of Steel.
You will help them accomplish wonders. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun cow. In time, you will help them accomplish wonders.
आज के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक गायक और टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार का। टी सीरीज की स्थापना इन्होंने की थी, एक म्यूजिक कंपनी थी, और गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शामिल है जिन्होंने काफी कम समय में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। इन्होंने टी सीरीज कैसेट्स के माध्यम से देवी देवताओं के भजन और गीत जनता के बीच प्रस्तुत किए। गुलशन कुमार ने टी सीरीज के जरिए संगीत को लोगों के घर घर पहुंचाने का काम किया और यही इनका सबसे बड़ा योगदान भी माना जाता है।
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले
और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो श्रोताओं दीजिए इजाजत विशाल शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
नमस्कार, नमस्कार।